بچایا جس دین کو بڑی قربانی دے کر, بچایا جس دین کو بڑی قربانی دے کر, آج وہی دین محمدی سارے جہاں کا ہے. بس شیخ شہداء کربلا امام حسین صلوات.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين, قاسم الجبارين, مبير الظالمين, مدرك الحاربين, رب الشهداء والصديقين, والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الشهداء الصديقين سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد, فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم, وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. سورہ نمبر 89, جس کا مشہور نام سورہ فجر ہے, لیکن ائمہ طاہرین نے سورہ کا ایک دوسرا نام بھی بتایا ہے کہ اس سورہ کا دوسرا نام سورہ امام حسین. امام حسین سے امام زمانہ تک, کربلا سے ظہور تک. اس عنوان پہ اب ہمیں اپنی بات شروع کر دینا چاہیے, ورنہ شاید محرم کے یہ پہلے 10 دن ختم ہو جائیں اور ہمارا سبجیکٹ کمپلیٹ نہ ہو سکے. لیکن جو بات کل رات کی مجلس میں انکمپلیٹ تھی, پہلے ذرا سا اسے مکمل کیا جائے. سورہ فجر شروع کی آیتیں بھی براہ راست آقا حسین کے کربلا کے جہاد کے بارے میں, اور آخری آیت تو آپ عصر عاشور کی مجلس میں یا شام غریبہ کی مجلس میں سنا کرتے ہیں, یا ایتہا النفس المطمئنہ, اور ان کے درمیان کی آیتیں امام مظلوم کا مشن اور امام زمانہ کا ظلم کا خاتمہ, اور اسی کے درمیان ہمارے اور آپ کے لیے ایک ایسا پریکٹیکل میسج جو آج کل مومنین کرام کے ایک بہت اہم سوال کا جواب ہے. مولانا, یہ حالات دنیا کے کب ٹھیک ہوں گے؟ یہ ریسیشن, یہ اکنامیکل پرابلم, یہ بزنس اور جاب کی انسیکیورٹی, آخر کتنے 4-5-6 سال تو ہوگا آپ کو یہ زمانہ دیکھتے ہوئے. قرآن کریم کی سورہ امام حسین کی اس آیت میں جسے میں نے آج کی مجلس کے شروع میں تلاوت کیا, اس سوال کا بھی ایک جواب ہے. لیکن ہم اپنی بات کو کل رات کی مجلس کے آخری جملے سے ملا, اور وہ یہ ہے کہ کربلا میں آقا حسین نے بھی یہ بیان کیا کہ میرے جہاد میں جو شامل ہونا چاہتا ہے, فیا لیتنی کنتو معکم, جو میرا ساتھی بننا چاہتا ہے اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ حبیب ابن مظاہر کی طرح سے اس دین کا علم تو رکھتا ہو جس دین کے لیے قربانی دینے جا رہا اور زمانے کے امام کی فوج میں شامل ہونے کے لیے اگرچہ 25 کنڈیشنز ہیں, لیکن سب سے پہلی اور سب سے اہم, اور یہ خالی امام مظلوم اور امام زمانہ کے جہاد کا تذکرہ نہیں ہے. آقا حسین کی ساری زندگی دیکھ ڈالی. کل آغا عبد الکریم حائری کے ایک واقعے کے ذریعے میں نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس دین کا علم آقا حسین کو اتنا پسند ہے کہ آئے ہوئے ملک الموت کو واپس کیا, لیکن خود آقا کی 57 سال کی زندگی میں کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں. شاید کل جو مجلس میری ہوگی اس میں تھوڑا سا تذکرہ مجھے حضرت خدیجہ کا ایک خاص حوالے سے کرنا پڑے, مگر جناب خدیجہ کا لفظ میری زبان پہ اس لیے آیا کہ جناب خدیجہ نے اہل بیت اطہار کی سیرت کے جس پہلو کو بیان کیا, جو اللہ نے دیا ہے راہ خدا میں خرچ کر دو. دولت خدیجہ کے حوالے سے ہمارے سامنے جو حضرت خدیجہ کا جہاد آتا ہے, جہاد ائمہ طاہرین کی ساری زندگی, کتنی مرتبہ اپنا پورا گھر, گھر کا سارا ساز و سامان سوال کرنے والے کو دے دیا. مگر ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا, یہ حدیث جو اب میں پڑھ رہا ہوں بہت اہم, کہ اس طرح سے سب کو برابر, بڑا خطرناک جملہ, سب کو برابر ٹریٹ نہیں کیا گیا. اہل بیت اطہار کے یہاں ایکوالیٹی یا مساوات نہیں ہے, عدل. جو جس چیز کو ڈیزرو کرتا ہے وہ اس کو دی جائے. ایک نمازی اور بے نمازی کا اسٹیٹس برابر نہیں, ایک متقی اور فاسق و فاجر کا اسٹیٹس برابر نہیں, مدد دونوں کی جائے, خیال دونوں کا رکھا جائے گا. لیکن ایک چیز ہوتی ہے ایکوالیٹی, ایک چیز ہوتا ہے عدل. آقا حسین اب ایک نہیں, اتنے سارے واقعات ہیں کہ سارا اشرا اسی ایک پوائنٹ کو واضح کرنے کے لیے بھی پڑھا جا سکتا, لیکن ضرورت نہیں. صرف دلیل کے طور پہ ایک بہت مشہور واقعہ, اور وہ یہ کہ آقا حسین مسجد النبوی میں تشریف فرما, خود مسجد النبوی اسلام کی سیکنڈ سب سے زیادہ فضیلت والی مسجد شہر مدینہ, ہر مومنہ مسجد النبوی کی زیارت کے لیے تڑپتا ہے, اور مسجد النبوی بھی میری کل رات کی اسپیچ کی ایک دلیل. اسلام میں سب سے پہلے مومن اور عام مسلمانوں اور عام انسانوں کو ایجوکیٹ کرنے کا پیغام, بے گھر کو ہوم لیس گھر دو, جو فاقہ جس کے گھر میں ہے کھانا دو, جس کے پاس پراپر کلوتھنگ نہیں ہے اس کے لیے کپڑے کا انتظام کرو. مگر ان سب سے زیادہ اہم اور سب سے پہلے, ابھی میں شاید اس کی جانب آ جاؤں کہ خود مسجد النبوی اٹسلف ایک دلیل اس بات کی ہے, لیکن پہلے یہ واقعہ پورا ہو. مسجد النبوی, آقا حسین جنت کے ٹکڑے میں, جنت کے باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں. عربی آیا, عرب کے ڈیزرٹ کا رہنے والا, اور آنے کے بعد کہا کہ فرزند رسول ایک انتہائی اہم مسئلہ مجھے پیش آ گیا, یعنی میری زندگی اور موت کا مسئلہ, میرے ہاتھ سے کسی آدمی کا قتل ہو گیا. اب اسلام میں بہت سیدھا سادہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے انٹینشنلی اور پرپزلی کسی کو کل کیا ہے تو قاتل کو کیپیٹل پنشمنٹ دی جائے گی, اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس میں کوئی اختلاف امنگ مسلمز نہیں. لیکن مرنے والا جو ہمارا وکٹم ہے, اگر اس کی فیملی راضی ہو جائے और नेगोशिएशंस हो जाए तो ब्लड मनी इस्लाम ने रखी है उसका पेमेंट कर दो, तो जो कातिल है, जो किलर है, उसकी जिंदगी बच जाएगी। अब ये तो बहुत लंबे लंबे मसाले होते हैं, हर चीज की डिटेल बयान करने का मौका नहीं होता। शॉर्ट में बात की जाए तो कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। जैसे कल मैंने आयतुल्लाह सिस्तानी की एक ऐसी कॉमन एडवाइस जो वह तकरीबन जायरीन के सारे ग्रुप को देते हैं, वो आपके सामने कोट की थी, मगर अब वर्डिंग को पकड़ के लोगों ने कहा कि जब आगा ने किसी भी एडिशन या डिलीट करने को मना किया तो मसलन जियारत आशूरा क्यों बढ़ा दी गई आजादारी में। जियारत आजादारी में हमेशा से थी, जियारत की वर्डिंग अगर चेंज हो जाए उसे एडिशन नहीं कहेंगे। जियारत, कोई ऐसी मजलिस अपनी याद करें कि जो जियारत में खत्म ना हो। अब चाहे आप जियारत वारिसा पढ़ें, चाहे जियारत आशूरा पढ़ें, चाहे शॉर्ट जियारत पढ़ें, चाहे लंबी जियारत पढ़ें, जियारत हमेशा से। अगर हम 20 साल पहले ईस्ट अफ्रीका में हजरत अब्बास के आलम के मौके पे दूसरा नोहा पढ़ते थे, आज हमने नोहा चेंज किया, इसे नहीं कहा जाएगा एडिशन कर दिया। वही वर्डिंग होना चाहिए जो 150 साल पहले हमारे दादा ने पढ़ा था। एक के बदले दो नोहे हो गए, इसको एडिशन नहीं कहेंगे। अब ये देखिए, इतना टाइम भी नहीं है कि मैं ये बातें समझाऊं, लेकिन अर्ज कर रहा हूं कि अगर शॉर्ट में बात की जाए तो ये प्रॉब्लम, डिटेल में बात की जाए तो एक आम मोमिन तो यकीनन बोर हो जाएगा और फिर हमारा अपना सब्जेक्ट हाथ से निकल जाएगा, ब्लड मनी, जिसे अरबी जबान में दिया और उर्दू में दियत कहने लगे, खूबहा फारसी में ब्लड मनी। अरबी आया कहा मेरे हाथ से किसी का कत्ल हो गया और अब मुझे हैंग किया जा रहा, वारिस राजी हो गए कि तुम कहीं से वो ब्लड मनी लेके आ जाओ तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। अब इस अरबी की तो जिंदगी और मौत का सवाल है, अगर ये दियत या ब्लड मनी को ना ला सका तो इसे कत्ल किया जाएगा। कहा कि इतनी बड़ी रकम, अच्छा ये ब्लड मनी कोई छोटी रकम नहीं होती, इसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता। मैं जंगल का रहने वाला, अरबी के पास कुछ नहीं होता, खाली एक ऊंट और एक टैंक, इसी पे उसकी सारी जिंदगी गुजरती। अब मैं शहर में आया हूं ताकि लोगों से डोनेशन लूं, लेकिन मुझे आपके जद रसूल खुदा की वो हदीस भी याद है कि हरेक के आगे हाथ ना फैलाना। अगर कभी सवाल करना पड़ जाए, अव्वल तो गैरतमंद मुसलमान को किसी से सवाल करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर कभी हेल्प की जरूरत पेश आ जाए तो या किसी शरीफ अरब के पास जाओ, या किसी करीम हाकिम के पास जाओ, या किसी हाफिज कुरान के पास जाओ, या किसी खूबसूरत और बेहतरीन शक्ल वाले के पास जाओ। अब ये एक एक लफ्ज इतना मुश्किल है, ये जो अभी उर्दू मजलिसें सुन लेते हैं उनकी भी समझ में नहीं आया होगा, और हमारे ये बच्चे जो बेचारे शौक में आके बैठे हैं उनकी क्या समझ में आए। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं अल्फाज को समझाऊं। इन शॉर्ट, अरबी कहता है कि आपके जद ने कहा हरेक के आगे हाथ नहीं फैलाना, अगर हाथ फैलाने की जरूरत पड़े तो इन चार में से किसी एक, और आपसे बेहतर इस वक्त कौन है जिसमें ये चारों बातें पाई जाती हैं। आप खानदान के एतबार से शरीफ करीन खानदान, औलाद इब्राहिम इस्माइल, करीम हाकिम, मासूम हाकिम, हामिल कुरान, हाफिज कुरान, दूसरे कुरान याद करते हैं आपके घर में तो कुरान उतरा, और आप शबीह रसूल, आपसे बेहतर शक्ल सूरत किसकी है, इसलिए मैं आपके सामने आया हूं। फरजंदे रसूल, क्या आप मेरी ये हाजत पूरी करेंगे? देखिए इमाम न यस कह रहे ना नो कह रहे। कंप्यूटर की वजह से आजकल लोग कोई सवाल करते हैं तो कहते हैं मौलाना बस यस या नो में जवाब दीजिएगा, कोई डिटेल नहीं चाहिए हमें। आका हुसैन ने न यस कहा न नो, कॉमन सेंस की बात थी, या तो कह देते यस हम तुम्हारी जिंदगी बचाएंगे और ये ब्लड मनी दे देंगे, या कहते कि नो इस वक्त इतना बड़ा अमाउंट नहीं। आका ने एक अजीब जवाब दिया, कहा कि मैं तुम्हें जो तुम्हारी डिमांड है वो पूरी करूंगा, मगर पहले मैं तुमसे तीन सवाल करूंगा। अगर तुमने तीनों का जवाब दे दिया तो जो तुम्हारी डिमांड है पूरी, दो का जवाब दिया तो टू थर्ड, एक का जवाब दिया तो वन थर्ड, और किसी का जवाब नहीं दिया तो कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि आगे रीजन, मेरे उन्हीं जद ने जिनकी हदीस की वजह से तू मेरे पास आया, उन्होंने ये भी इरशाद फरमाया, अल मारूफ हो बेकदर इल मारेफा, कि जब कभी किसी के साथ नेकी करना तो पहले ये देखना कि उसके पास दीन की नॉलेज और मारेफत कितनी है। हर एक के साथ बराबर का सुलूक नहीं करना है। देखिए हमारे यहां आजकल एक बड़ा प्रॉब्लम ही आ गया, जिसका दिल चाहता है हदीस को कोट कर देता। हदीस पूरी एक साइंस है, सही हदीस गलत हदीस, सही हदीस में से कौन सी हदीस जर्नलाइज है, कौन सी किसी एक खास मौके के बारे में आई है, कौन सी हदीस दूसरे को एक्सप्लेन कर रही। तकब्बुर, गुरूर, एरोगेंस, घुमंड, बदतरीन गुनाह। अल्लाह हर एक को माफ करता है लेकिन एक शिर्क करने वाले को माफ नहीं करता। कुरान की आयत, तकब्बुर करने वाले को माफ नहीं करता, पैगंबर की हदीस। लेकिन उन्हीं रसूल ने कहा अतकब्बुरो माल मुतकब्बिरे इबादा। हाँ, अगर तुम्हारे सामने कोई घुमंडी आदमी आ गया, एरोगेंट, तुम उसके साथ उसी तरीके से पेश आओ, ये इबादत है। जरा उसका दिमाग तो ठीक हो, उसको पता तो चले कि हर आदमी उसके पैसे या स्टेटस की वजह से उसके सामने झुकेगा नहीं। अब वो पहली हदीस तकब्बुर हराम है, गुनाह कबीरा है, मगर दूसरी हदीस बता रही कि कुछ मौकों पर इसकी इजाजत है और कुछ मौकों पर यह जरूरी होता। हर एक की मदद करो, लेकिन यह हदीस बता रही बेकदरिल मारेफा, पहले ये देखो उसके पास दीन की मालूमात कितनी है, मारेफत कितनी है, नॉलेज कितनी है। देखिए इसी किस्म से, इसी तरह के वाकयात से इमाम मासूम दीन का इल्म फैला रहे। अब अगली दफा कोई इमाम के पास सवाल करने आएगा, कुछ पढ़ के आएगा, कुछ सीख के आएगा, कुछ मालूमात लेके आएगा। गर्चे जिस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था वो यहां पूरा हो गया। खाका हुसैन, जिसने अपनी पूरी औलाद मुसलमानों के लिए, पूरा घराना मुसलमानों के लिए कुर्बान कर दी, ब्लड मनी देने में कोई मसाला नहीं। लेकिन ये अरबी जाहिल एक मसाला शरी नहीं जानता, कहा कि इसकी नॉलेज को इंक्रीज किया जाए इसी बहाने से। सही, अब ये अलग बात कि इमाम ने जो उससे तीन सवाल किए तो तीनों का जवाब उसने दे दिया। मैं पूरी रिवायत नहीं पढ़ रहा क्योंकि टाइम मेरे पास नहीं। कल भी कुछ लोगों ने कंप्लेन की कि मौलाना आपने 8 मिनट और 35 सेकंड ज्यादा पढ़ दिया। ओके सॉरी सॉरी, और मैं ख्याल करूंगा कि आज 8 मिनट और 35 सेकंड कम पढ़ूं, लेकिन उसके लिए मुझे बाद रिवायतें आधी आधी पढ़ना पड़ेंगी जो मेरे पॉइंट को वाजे कर रही। आका हुसैन दीन का इल्म किस तरह फैला रहे हैं, ये सबसे अहम बात, और इसमें खास तौर पे हमें ये बता रहे। पहले एक जमाने में मैं ये स्टोरी बहुत पढ़ता था और 40 मिनट 45 मिनट आराम आराम से मजे मजे से एक एक चीज समझाकर, लेकिन वक्त भी कम है, मशहूर वाकया है, शॉर्ट में सुन लीजिए। और ये समझा रहे आका हुसैन, याद रखो मेरे बाबा ने जो ये कहा, ये बगैर इल्म हासिल किए दीन पर अमल करने वाला, दो हदीस, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इनकसरा ज़ाहरी रजुलान, मेरी कमर तोड़ दी दो आदमियों, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं दो आदमियों ने, आलिमुन फासिक, ऐसा इल्म रखने वाला जो इल्म रखता है लेकिन अपने इल्म के मुताबिक प्रैक्टिस नहीं करता, और दूसरा आबिदुन जाहिल, ऐसी इबादत करने वाला जो नमाजें पढ़ रहा, रोजे रख रहा, जियारतें पढ़ रहा, वाजिबात दीन अमल कर रहा, मगर उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं। अल्लाह के रसूल कह रहे इन कसरा सहरी, ये दो आदमी मेरी कमर तोड़ रहे हैं। मुल्ला अहमद निराकी जैसे अजीम मर्जे ने यह हदीस मेराज सादा में कोट की, और मौलाए कायनात की हदीस के बगैर दीन की नॉलेज लिए हुए दीन पे अमल करने वाला उस मुसाफिर की तरह है जो सही रास्ते पर है और गलत डायरेक्शन में है। उसे जाना M4 पे ही था या M1 पे था, लेकिन बजाय साउथ के वो नॉर्थ की डायरेक्शन में है। अब ये जितना गाड़ी को दौड़ाएगा उतना अपने डेस्टिनेशन से दूर होता चला जाएगा। आका हुसैन अपनी तमाम इबादतें इंक्लूडिंग चैरिटी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इसकी वजह से ज्यादा लोग दीन के करीब आए, वरना क्या होता। हमारे प्रॉब्लम का कॉज रूट बनी इसराइल का वो नौजवान मर गए। कौन नौजवान? जिसकी स्टोरी मैंने कई दफा पढ़ी, बहुत ही पायस, बहुत ही मुत्तकी, बहुत ही परहेजगार, और उसकी वाइफ भी उतनी ही नेक। ये बहुत कम होता, ज्यादातर हमारे यहां शादी में मिसमैचिंग होती, शौहर शराबी है और उसकी बीवी हिजाब करने वाली और नमाज शब तक पढ़ने वाली नमाजी। वालिदैन ख्याल नहीं करते हैं कि जहां बेटी दे रहे हैं वो घर इस काबिल है कि नहीं। शौहर इंतहाई मुत्तकी और परहेजगार है और बीवी फासिका फाजिरा बेहिजाब मिक्स गैदरिंग को अटेंड करने वाली। ये अल्लाह की एक नेमत है कि शौहर और बीवी किरदार और रिलीजन के एतबार से भी एक दूसरे के मैच मिले। जहां ऐसा मैच होता वहां पे आका हुसैन का जुमला आता है कि मेरा दिल नहीं लगता उस घर में जहां रबाब या सकीना ना हो। जब ऐसा मैच होता है खदीजा ताहिरा से लेके रबाब तक, एक मैसेज है हमारे लिए कि ये भी पेरेंट्स की एक बहुत अहम जिम्मेदारी होती है। लेकिन खैर, आजकल की यंग जनरेशन ने पेरेंट्स को बीच से निकाल फेंका। फेसबुक उनके लिए काफी है, वही उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। लेकिन ये टॉपिक बाद में अभी आएगा, क्योंकि इमाम जमाना के जुहूर का फेसबुक से भी ताल्लुक बन रहा। और यहां रुक एक बात ऐसी कहूं जो कल रात की मजलिस में, वरना मंडे से तो हमारे टॉपिक में आएगी, और वो ये कि जो रिवायतें मैंने पढ़ी, मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता ये तो मेरे लिए हराम है, लेकिन एक गैस, एक अंदाजा कि अगर सीरिया में इस वक्त का जो मौजूदा प्रेसिडेंट है या जो रजीम है, अगर ये खत्म हो गई तो शायद सुफियानी ही आएगा। और जो इसके हवाले से हमारे पास सुफियानी की डिटेल है, वो कद्दाफी से लेके बशार उल असद तक के हालात में किस तरह पूरा उतर रही, तो ये बातें जब आएंगी उसके अंदर फेसबुक का रोल बहुत अहम है गैबत इमाम के आखिरी जमाने में। लेकिन ये जुमला तो इसलिए आ गया कि आजकल हमारे यूथ यंगस्टर अपना मैच खुद ढूंढ लेते हैं फेसबुक के जरिए और बाद में सारी जिंदगी पछताते हैं। फेसबुक की वजह से किसी को अपना फेस दिखाने के काबिल भी नहीं रहते। लेकिन फिलहाल बनी इसराइल के उस कपल का तस्किरा तो हो जाए, शौहर भी अच्छा, बीवी भी अच्छी। और एक खास बात उनमें यह थी कि जितने नमाजी थे उतना ही राह खुदा में सदका और खैरात और चैरिटी करने वाले भी थे। और अल्लाह का वादा कि तीन ऐसे खर्चे हैं कि अगर इन तीन जगहों पे कोई आदमी खर्च करेगा तो आखिरत में तो उसे पूरा सवाब मिलेगा, कब्र में तो उसे पूरा बेनिफिट मिलेगा, दुनिया में भी इसे 70,000 टाइम इसका रिवार्ड मैं दूंगा। हज, वालिदैन और गरीब रिश्तेदारों की मदद, सिला रहम का एक हिस्सा ये भी है, लेकिन अभी सिला रहम हमारा उनवान नहीं। ये कपल ऐसा ही था, अल्लाह ने जितना दिया था उससे ज्यादा खर्च करता था, जितना ज्यादा खर्च करते थे उससे ज्यादा इनको मिलता था। अचानक इम्तिहान तो अल्लाह हर एक का लेता, अचानक शौहर की मौत हो गई। पुराना जमाना, औरतें न जॉब करती हैं ना बिजनेस, जो शौहर छोड़ के गया अब बच्चे के जवान या बालिग होने तक किसी में गुजारा करना, एक छोटा सा बेटा भी था इनका 5 साल का, 4 साल का। बाज़ औकात आदमी अपने दिमाग और मगज से कोई चीज सोचता है और उसे अच्छी लगती, मगर जरूरी नहीं कि जो हमारा ख्याल हमें अच्छा लगे। बहुत ही शॉर्ट एक मसला, उसका जवाब ये आगा सिस्तानी की उसी बुक में प्रिंटेड मसला, इसका एक मसला मैंने कल पढ़ा था, मसाइले हज। सवाल किया गया कि हम अपना वाजिब हज कर चुके हैं और अब हमारे रिश्तेदारों में और जानने वालों में बहुत से गरीब ऐसे हैं जो हज के लिए तड़प रहे हैं। अल्लाह ने हमें हैसियत दी, हम दोबारा खुद हज पे जाएं या उस बेचारे को हज पे भेजें जो हज के लिए तड़प रहा है और रिसोर्सेज नहीं। अपनी अकल से सोचेंगे तो जवाब मिलेगा, भाई तुम तो हज करके आ चुके हो, वो बेचारा गरीब मुस्तहिक उसे हज पे भेजो। जवाब है कि नहीं, दोबारा खुद हज पर जाने का सवाब ज्यादा है किसी और को हज पर भेजने से। और 5 साल में तो हज को रिपीट करना इतना अहम है कि जस्ट लाइक वाजिब। अब अगर अपने हिसाब से सोचे, गरीब को हज पे भिजवाए, एक बेचारा सैयद, एक बेचारी सैदानी,